तवाफ की इब्तिदा जो है वो हजरे अस्वद से होती है, उसको चूम कर। लेकिन अगर चूमने का मौका ना हो तो दूर से भी आप सिर्फ एक हाथ से इशारा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस हाथ को मुंह के साथ लगाएं या वहां पर रुक जाएं और बहुत देर के लिए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और भीड़ कर देते हैं और आगे नहीं चलते। बाद लोग उस पट्टी को नीचे नहीं देखते और उससे पहले ही रुके खड़े होते हैं या क्रॉस करके रुकते हैं, तो वो बाकायदा निशान है हजरत अस्वद के नीचे ज़मीन पर, डार्क ब्राउन कलर की पट्टी है, उसे देख कर वहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आगे चले जाना चाहिए। यहाँ कोई बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर लंबी लंबी दुआएं पढ़नी शुरू कर देते हैं, रश कर देते हैं, जिससे दूसरों को बहुत अजियत और दकम्पेल होती है। इससे बचना चाहिए, यानी हाथ भी लगाया जा सकता है इसको, या दूर से सिर्फ दाएं हाथ का इशारा काफ़ी है और अपना तवाफ शुरू कर देना चाहिए। तवाफ शुरू करने से पहले चादर का एक हिस्सा दाएं कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे पर डाल लेना चाहिए, यानी हालत इस्तिबा इख्तियार करना चाहिए, और ये मर्दों के लिए है। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान, यानी जहाँ हजरे अस्वद है यहाँ से आपने शुरू किया, एंड भी तवाफ का यही होता है, लेकिन इससे पिछला कॉर्नर जो है वो रुकने यमानी कहलाता है। यमानी यमन की तरफ उसका रुख है, इसलिए उसको यमानी कहते हैं। अब आप देखिए कि इस जगह के बीच में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ना चाहिए। जब आप तवाफ शुरू करें तो उस वक्त इसका पढ़ना जो है ना, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। एक तवाफ के लिए 7 चक्कर होते हैं, और 7 चक्कर पूरे करने के बाद वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये पढ़ते हुए मकाम इब्राहीम की तरफ आना चाहिए, वहाँ नफल पढ़ने चाहिए 2 रकत। पहली रकत में सूरत अल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना मसनून है। अगर आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है, क्योंकि ये सुन्नत है। एक और बात याद रखिए कि ना तो हम खाना काबा को पूछते हैं ना मकाम इब्राहिम को पूछते हैं, क्योंकि कुरान पाक में आता है फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत। ये सब कुछ सिंबल है, इन चीज़ों के अंदर कुछ नहीं। इनकी अहमियत भी अल्लाह के बताने से हुई है, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत अस्वद को जब बोसा दिया तो कहा था कि या हजर इन्नका हजर ला तन्फा वला तदुर, कि ए पत्थर तुम पत्थर हो, ना नफ़ा देते हो ना नुकसान। बाज़ लोग खाने काबा के ऊपर कपड़े रगड़ रहे होते हैं या हाथ फेर रहे होते हैं, चलो मोहब्बत में हाथ फेरना तो और बात है, लेकिन ये समझना कि हाथ फेरने से कोई फ़ायदा हो जाएगा या बीमारी दूर होगी या ये पत्थर हमें शिफा देंगे, ये सब शिरकिया बातें होती हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। नमाज के बाद आबे जमजम पीना और कुछ सर पे भी डालना चाहिए, अपने मुंह पे छींटे मार सकते हैं, सीने पे मार सकते हैं, सर पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना और सही के लिए सफ़ा पहाड़ी की तरफ जाना चाहिए। और पानी पीने के लिए आप कूलर से भी पी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप नीचे उतर जाएं जहां पर जो कुआं है उससे डायरेक्ट पानी आता है। मुल्तज़म के पास अमूमन ख़वातीन नहीं जाती और ना ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मर्दों से टकराव होता है तो फिर मुश्किल पड़ती है। यहाँ चिमट कर दुआ मांगना मुस्तहब है, लेकिन अगर हमें मौका नहीं मिलता और दूर से भी मांगते हैं तो इंशाल्लाह नियत का अजर मिल जाएगा। फिर इसके बाद सही शुरू होती है। सही का लफ्ज़ी माना है दौड़ना। कुरान पाक में आता है इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैत अव अतमरा, तो जो बैतुल्लाह का हज करे या उमरा करे, फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ़ करे। वमन ततव्वा खैरन, और जो खुशी से नेकी करे, फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह कदरदान है जानने वाला है। इस आयत को पढ़ भी लेना चाहिए और फिर ये अल्फाज कहने चाहिए, अब्दाउ बिमा बदा अल्लाह, मैं उससे इब्तिदा करता हूँ जिससे अल्लाह ने इब्तिदा करने को कहा है। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर किबला रुख खड़े होना और 3 मरतबा ये कलमात कहना चाहिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده। और फिर नीचे आकर शुरू करना चाहिए। पत्थर काफी अब ऊंचे हो गए हैं, जरूरी नहीं कि इन पत्थरों पर जाके चढ़ें, अब तो पत्थर ना होने के बराबर नजर आते हैं। बस जरा सी ऊंचे हिस्से में अगर आप खड़े होकर खाना काबा की तरफ रुख करके ये कलमा 3 दफा पढ़ लेते हैं और तवाफ शुरू कर देते हैं यानी सही, तो उससे काम हो जाता है। सब सुतूनों के दरमियान मर्दों को तेज़ चलना चाहिए, लेकिन औरतों को अपनी नॉर्मल रफ्तार से। इसमें आप देखिए कि बाज़ लोग 7 दफ़ा पूरा घूमते हैं तो उसको सही समझते हैं, हालांकि 1 चक्कर जो है सफा से मरवा का हो गया, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, तो इस तरह 7 पूरे हो जाते हैं और मरवा पे खत्म होता है जाके। फिर सफा से शुरू होता है और मरवा पे खत्म होता है 7वां। यहाँ पर फिर बाल काटने चाहिए, एक या दो पोर इतना से बाल काटना काफी है। किसी एक जगह की लिट से भी काट सकते हैं और पूरी चुटिया के आखिर से भी काट सकते हैं। और मर्दों के लिए जो हल्क है यानी पूरा सर मंडवाना, वो ज्यादा अफसल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए जो पूरा सर मंडवाए 3 दफा रहमत की दुआ की है। लेकिन यह कि अगर थोड़े से बाल भी काट लें तो उम्रा हो जाता है। एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन लेना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उम्रा मुकम्मल हो गया। अब हज का मौका है, 8 ज़िलहज को दोबारा एहराम पहना जाएगा और उसके लिए सफ़र मक्का से शुरू होगा। सबसे पहले मीना जाएंगे, मीना में पहुंचे, एहराम बांधने से कबल लब्बैक हज्जन कहकर हज की नियत करनी चाहिए, बुलंद आवाज़ से तलबिया कहना चाहिए और ये अल्फाज भी, अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमअतन, या अल्लाह मेरे इस हज से न दिखावा मकसूद है न शोहरत मतलूब। मीना पहुँच कर 8 ज़िलहज को एहराम बांधने के बाद जहर से कबल तलबिया कहते हुए मीना पहुँचना, वहाँ जहर असर मगरब इशा और फजर की 5 नमाजें कसर करके अपने अपने वक्त पर बाजमात अदा करना चाहिए। लेकिन ख़वातीन अपने ही जगहों पर अदा कर सकते हैं। और इसमें भी याद रखिए कि बहुत से वक्त हम पाबंद होते हैं वो सारे इंतज़ामिया के कि किस वक्त वो हमें ले जा रहे हैं। बाज़ लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग ले जाते हैं, बाज़ों का ज़ोर से भी बाद का वक्त मिलता है, तो इसमें आप मजबूर होते हैं। अगर आप अपने ओन पे हज कर रहे हैं तो फिर आप ये 5 नमाज़ें वहाँ अदा कर सकते हैं। अगर रह भी जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि 8 तारीख को मीना पहुँचना लाजिम है। फिर 9 तारीख को तुलुए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील और तलबिया कहते हुए मीना से अरफात रवाना होना चाहिए। यहाँ पर मस्जिद नमरा है, ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद के अंदर जाएं। अरफात में दाखिल होने से कबल वादी नमरा में क़याम करना जहर के वक्त, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, अरफात जाने से पहले रास्ते में वादी नमरा में क़याम किया था और फिर जवाल के बाद आपने वहाँ पर वकूफ़ किया था यानी अरफा में। तो यहाँ पर इमाम का खुतबा हज सुनना, फिर जोर और असर की नमाजें वहाँ पर अदा करना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग झगड़ों में पड़ जाते हैं, कसर पढ़ें कि पूरी पढ़ें और इस किस्म के, तो प्लीज़ झगड़ों में पड़ने की बजाय जो आपको वहाँ जो बता रहा है उसके मुताबिक कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हज हो जाएगा आपका। क्योंकि हज के मौके पर जिस चीज़ से ख़ास तौर पर कुरान में बचने के लिए कहा गया ला जिदाल, वही हम वहाँ शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर फतवे लगाने लगते हैं। इसमें ठीक है आइम्मा कराम की आरा मुख्तलिफ हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज़ साबित है बहरहाल वो क्या है कि जोहर और असर की दोनों नमाजें एक अजान और दो इकामत के साथ बाजमात कसर अदा हुई, जम अन व कसरा। वहाँ के जो इमाम है वो इसी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन बाज़ ममालिक के लोग जो डिफरेंट फिक फॉलो करते हैं वो उस वक्त में भी अपनी पूरी करना चाहते हैं। आप चाहें तो पूरी करें, ना चाहें और कसर इमाम के पीछे पढ़ लें तो भी आपका हज दुरुस्त हो जाएगा। अरफात के मैदान में साइबान के नीचे अमूमन लोग होते हैं, धूप में खड़ा होना ज़रूरी नहीं, जबल नूर पे चढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन चूँकि वकूफ़ अरफात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर दुआएं मांगी थी। तो जितनी भी दुआओं की किताबें और डायरियां और जो जो आपने रखा हुआ है, अब काफ़ी वक्त है आपके पास, जवाल आफ्ताब यानी जोहर से लेकर मगरिब के वक्त तक आपके पास कई घंटे हैं, खूब खूब दुआएँ मांगे। यही हज का असल दिन है, अलहज अरफा, हज का रुकन आज़म है। फिर जबल रहमत के दामन में या जहाँ जगह मैसर आए वकूफ़ करना चाहिए, किबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके कुरानी और नबवी दुआएं मांगना और दरमियान में तकबीर और तहलील और तलबिया भी कहना चाहिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी बीच बीच में पढ़ना चाहिए। फिर आप थक जाएं तो बैठ भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, अगर बहुत नींद का गलबा तो थोड़ा सा सो के फ्रेश भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कि जिससे आप मजीद इबादत के लिए फ़्रेश हों, ये नहीं कि आप फिर सोते ही चले जाएँ। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरब अदा किए बग़ैर सुकून और वक़ार के साथ तलबिया कहते हुए मुज़दलिफ़ा रवाना होना चाहिए। बहुत से लोग पैदल चलते हैं, गाड़ियों में भी होते हैं, लेकिन इस वक्त में भी दुआएं करते रहना चाहिए। एक अजीब मंजर होता है, हमेशा दुनिया में मगरिब की अजान होती है तो सब नमाज के लिए दौड़ते हैं और यहाँ अजान होती है तो आपको नमाज नहीं पढ़ना बल्कि आपको यहाँ से चलना है। फिर मुज़दलिफ़ा आप पहुँचते हैं, यानी आप मक्का से मीना आए, मीना से अरफात, अरफात से आप मुज़दलिफ़ा आएँगे, रात यहाँ गुजारेंगे, 9 और 10 के बीच की रात यहाँ गुजरेगी। 8 और 9 के बीच की मिना में गुजरी, दिन अरफात में गुजरा, रात फिर मुजदलिफा में आ गए। मुजदलिफा पहुँच कर मगरिब और ईशा की नमाजें एक अजान और दो इकामत के साथ कसर करके जमा और कसर अदा करनी चाहिए। रात सोकर गुजारना और 10 ज़िलहज्जा की नमाज फजर मामूल के वक्त से थोड़ी पहले अदा करना चाहिए। बाज़ लोग सारी रात यहाँ जागते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रात को आराम किया था, इसलिए आराम करना भी मसनून है। वकूफ़ मुजदलिफा के बाद मिना रवाना होने से पहले सिर्फ जमरा अकबा की रमी के लिए मुजदलिफा से 7 कंकरियाँ चुनना मुस्तहब है, लेकिन मुमकिन ना हो तो आप मिना में भी चुन सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। रमी के लिए कंकरी का हजम चने के दाने से कुछ बड़ा होना चाहिए। बाज़ लोग बड़े बड़े पत्थर उठा लेते हैं या जूते मारते हैं या और चीज़ें फेंकते हैं, ये सब खिलाफ वक़ार बातें हैं, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जिस शैतान को हर वक्त हमने दोस्त बनाया हुआ है, वहाँ जाके उस पर जूते मार भी आए तो कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं। नेक्स्ट, नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद मशरुल हराम पहाड़ी के दामन में या जहाँ भी जगह मिले, क़िबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके सूरज तुलू होने से कबल खूब रोशनी फैलने तक तकबीर और तहलील कहना, तौबा इस्तग़फ़ार करना और दुआएं मांगना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है, लेकिन अफसोस के बाद वहाँ से जो मुअल्लिम होते हैं या काफ़िले होते हैं वो कुछ करने नहीं देते और एक भीड़ और एक रश की हालत होती है, लोगों को ख़ुद कुछ पता नहीं होता और बस जल्दी जल्दी में एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ले जाते हैं। उसमें इंसान मजबूर है, माजूर है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो जी भर के अपनी सुन्नतों की अदायगी कीजिए। फिर मिना में वापस आएंगे आप, तुलू आफ्ताब से कबल सुकून और वक़ार के साथ तलबिया कहते हुए मिना रवाना होना और रास्ते में वादी मुहसर से तेज़ी से गुजरना चाहिए। ये वादी मुहसर वो जगह है जहाँ अब्रहा का लश्कर जो है हलाक हुआ था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रुकने से मना किया और तेज़ी से गुजरने का हुक्म दिया। मिना पहुँच कर तुलू आफ्ताब के बाद जमरा अकबा की रमी करनी चाहिए। रमी कहते हैं पत्थर मारने को, पत्थर फेंकने को। रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना चाहिए। कंकरियां मारते वक्त अल्लाह अकबर कहना मसनून है और 7 कंकरियां फेंकना होती हैं। जमरा अकबा यानी पुल है, पुल के नीचे भी है ये इसका सिंबल, ऊपर भी है, जहां आपके लिए सहूलत हो आप जाइए। इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है और अमूमन यहाँ पर बहुत खौफ और हरास भी फैल जाता है, बाज़ औक़ात लोग पाँव के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि होता यह है कि सब एक ही जगह से जा रहे होते हैं और एक ही जगह से आ रहे होते हैं, तो ये जो गड़बड़ होती है और फिर ग्रुप्स बने हुए होते हैं और वो इकट्ठे धक्के दे रहे होते हैं, इसमें फिर बहुत मुश्किल होती है। अभी तक इस मसले का कोई हल शायद समझ में नहीं आया लोगों के, लेकिन यह है कि इंसान को कोशिश करना चाहिए कि अपनी तरफ से किसी को अजियत न दे। कंकरियाँ मारने के बाद फिर कुर्बानी करना होती है और कुर्बानी के गोश्त में से कुछ खुद भी पका के खा सकते हैं, अगर मौका ना हो तो सारा ही दे दें। फिर यहाँ पर बाल कटवाना या मुंडवाना, इनमें से दोनों काम होंगे, ये इस दिन का ख़ास अमल है। और फिर आपका तहल्लुल अव्वल हो जाता है, यानी आप एहराम की चादरें उतार देते हैं और आप नहा धो के खुशबू वगैरह लगा सकते हैं। ये ख़वातीन तो तेज़ खुशबू नहीं लगाएंगी, लेकिन ये कि अब आप फारिग हो गए, सिवाय शोहर और बीवी के ताल्लुक़ के तमाम चीज़ें जो हैं वो जायज़ होती हैं। अब हज का दूसरा रुकन जो है तवाफ़ इफाज़ा, ये करना है। ये हज का रुकन रुकन आज़म है एक तरह से, यानी हज के दो फ़राइज़ हैं, एक अरफा में क़याम और एक ये तवाफ़। अगर ये दो नहीं हुए तो हज नहीं होगा। और ये तवाफ़ कब होता है? मिना से, मिना में कंकरियाँ मार के, कुर्बानी करके और बाल कटवा के फारिग हो के, नहा धो के फिर आप जाते हैं मक्का दोबारा। अब आप देखिए, मक्का से चले मिना आए थे, मिना से अरफात गए थे, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से वापस मिना और फिर वहाँ से दोबारा मक्का, और यहाँ पर तवाफ़ और सही होगी। फिर उसी तरह तवाफ़ के बाद जमजम पीना, कुछ दुआएं मांगना, फिर सफ़ा मरवा की सही, फिर आप मक्का से वापस मिना आ जाएंगे। क़याम मिना के दौरान मुमकिन हो तो रोज़ाना तवाफ़ करें आके, वरना मस्जिद ख़ैफ़ में बाजमात नमाजें अदा करें। बकसरत तहलील व तकबीर हो, हमदो सना हो, तौबा इस्तग़फ़ार हो और खाना पीना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के हैं, कसरत से जिक्र और उसमें तकबीरें खुसूसन नमाजों के आसपास। और उसके अलावा, और इसमें यह है कि मस्जिद में जाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बहुत दूर है आप और मस्जिद में हर वक्त पहुंचना मुमकिन नहीं, तो जहां जहां खैमे हैं वहां पर बाजमात नमाज का अहतमाम कर लेना चाहिए। अय्याम तशरीक जो है 11, 12, 13 ज़िलहज की रातें ये मिना में ही गुजारनी चाहिए। और इसमें यह है कि 11 और 12 तक भी आप रुक सकते हैं, अगर 13 रुकना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं। रोज़ाना जवाल आफ्ताब के बाद, यानी पहले दिन तो आपने सुबह में कंकरियाँ मारी थी, अब ये अगले 3 दिन जो है ये सूरज जब जवाल हो जाएगा, यानी जोहर का वक्त होगा, उस वक्त आप कंकरियां मारेंगे, और पहले जमराए उला की, फिर वुस्ता, फिर जमराए अकबा की, तरतीब के साथ रमी करनी चाहिए। यानी आप आए हैं पहले जमराए उला, उला का मतलब भी पहला, वुस्ता बीच का और अकबा पिछला, यानी जिसको बड़ा शैतान कहते हैं। जमराए उला वुस्ता की रमी के बाद किबला रुख खड़े होकर दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन जमराए अकबा की रमी के बाद दुआएं मांगे बगैर वापस पलटना चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। 12 ज़िलहज को मीना से वापस आना हो तो गुरूब आफ्ताब से कबल मीना से निकलना चाहिए। अगर आफ्ताब गुरूब हो गए तो फिर अगले दिन जाइए कंकरियाँ मारकर, और जब आपकी वापसी हो तो उस वक्त कहिए रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह ताला तो इसको कबूल फरमा, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। चंद चीज़ों की तरफ और तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि बाज़ लोग वहाँ पर इन जगहों का अदब एहतराम नहीं करते, कूड़ा करकट फेंक देते हैं। आप देखिए कि आप फेंकने का तो तसव्वुर भी ना करें, अपने पास ऐसे शॉपर रखें कि जिसमें अगर कोई चीज़ डालनी पड़े तो आप डाल लें और फिर प्रॉपर जगह पर उसको फेंकें। हाँ, अगर हो सके तो ये ज़रूर करें कि जो कूड़ा करकट वहाँ मस्जिद शेख या नमरा या मस्जिद हराम या मस्जिद नबी में कोई और फेंक दे, उसको भी उठाएं। ये बहुत ही सवाब का काम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक काला मर्द या औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करता था तो वो फौत हो गई। ये बहुत सी अहादीस औरत के बारे में आती, एक मर्द के बारे में भी आती। आपको उसके मरने की खबर हुई, आपको उसको मरने की खबर ना हुई, एक दिन आपने उसको याद फरमाया कि वो कहाँ है, यानी झाड़ू देने वाली वो औरत कहाँ है। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो फौत हो गई। आपने फरमाया, तुमने मुझे खबर क्यों ना दी। लोगों ने कहा, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और उसका किस्सा बयान किया, यानी उसको मामूली चीज़ समझा। आपने फरमाया, मुझे उसकी खबर बतलाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए, फिर आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। तो ये सआदत उसको क्यों नसीब हुई। कई लोगों की तो नमाज जनाजा पढ़ने से आप इनकार कर देते थे, उनके उसको कर्ज अदा नहीं किया होता था, लेकिन इसकी नमाज जनाजा आपने कब्र पर जाके पढ़ी। क्यों? ये मस्जिद की सफाई करती थी औरत। हमें भी ये सआदत हासिल करनी चाहिए। कहा ये कि हम पानी पिए और वहीं गिलास फेंक के उठ के आ जाएं, या कुछ खाएं पिएं वहीं टिशू। बाज़ लोग तो हर किस्म की गंदगी वहाँ फेंके हुए होते हैं, अल्लाह रहम करे। तो यानी इसमें नफ्स का बड़ा तज़किया होता है, यानी दूसरों के कूड़ा उठाने, क्योंकि अपने घरों में तो हम आमतौर पर इसका इतना एहतमाम नहीं करते, या खुसूसन वो लोग जिनको घरों में बहुत सी ऐसी सहूलतें मैसर हैं, मौका ही नहीं आता ऐसे काम करने का, तो वहाँ जाकर खुसूसी तौर पर इस नेकी के कमाने का भी एहतमाम करें। यानी नमाज, जिक्र, दुआएं, ये तो सब ठीक है अपनी जगह, या बाकी रिचुअल्स की अदायगी, लेकिन कुछ इस तरफ भी तवज्जो। फिर इसी तरह वॉशरूम्स को एहतियात से इस्तेमाल करें। जब आप निकले तो इस हाल में उसको छोड़ कर आएँ कि दूसरा जाए तो उसको कराहत ना हो। पानी बहुत ज़्यादा खोल कर ज़ाया ना करें। फिर इसी तरह अपने जिस्म और लिबास वगैरह की सफाई का भी ख्याल रखें। बाज़ लोग पसीने में अटे हुए मस्जिद में आ जाते हैं और बहुत नमाज की खुशबू में खलल डालते हैं। आप भले इस्त्री ना करें, भले बहुत अच्छे कपड़े ना पहने, सादा लिबास, मामूली सिंपल सा लेकिन धुला हुआ साफ लिबास पहनने की कोशिश करें। फिर इसी तरह यह है कि थोड़ा बहुत तबलीग और तालीम का काम भी कर लें। जो लोग आपके साथ ग्रुप में हैं उनको कुछ सिखाने के लिए कोई किताब पास रखें। जो लोग वहाँ पर कहीं भी आपको मिलें, किसी को कोई दुआ सिखा दी, किसी को कोई मसला बता दिया, किसी को, यानी कोशिश करें कि कोई एक एक अच्छी अच्छी बात आप किसी न किसी को बताते रहें। छोटे छोटे कार्ड कैसेट्स तो तकसीम कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप खुद ज़बानी भी थोड़ी थोड़ी बात बताएं, लेकिन किसी के सर पर सवार ना हो। अब एक अहम काम जो लोग वहाँ पर जाकर करना ज़रूरी समझते हैं वो है शॉपिंग। इसको सबसे आखिर की लिस्ट पर रखिए, या ये कि बीच बीच में कोई थोड़ा बहुत, क्योंकि बाज़ लोग इतना सामान जमा कर लेते हैं कि कमरे में लोगों के रहने की जगह नहीं होती, खसूसन जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, और सामान ज़्यादा हो जाता है, या फिर मदीना उठा कर ले जाते हैं फिर वापस लाते हैं और एक अजाब में गिरफ्तार रहते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब बिल्कुल वापसी का वक्त हो तो कुछ लोगों के लिए अगर आपको हदिया वगैरह ख़रीदना हो तो वो आप ख़रीद सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन रवाज क्या है, जाय नमाज तस्बीह। अब हर शख्स वापस आने वाला जाय नमाज दे रहा, तस्बीह दे रहा। अब क्या होता है कि कोई कितनी जाय नमाजों पर नमाज पढ़ेगा और कोई कितनी तस्बियाँ पढ़ेगा। तो सिर्फ जाय नमाज और तस्बीह को एक रिचुअल समझ के मत ख़रीदें, उसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं। मसलन अच्छी तिलावत की कैसेट्स लाएँ, वो लोगों को दें वहाँ से लाकर। अमूमन हम किताबों की दुकान पर तो जाते ही नहीं ना वहाँ की शॉपिंग करते। इसी तरह आप खजूर ला सकते हैं, जमजम तो खैर लाना ही होता है। इसी तरह ये है कि आप ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश करें कि जो दूसरे इस्तेमाल करें और आपको सवाब और फ़ायदा भी पहुँचे। यानी صرف ایک مخصوص چیز خرید کر اور صرف ایک سر سے اتارنے والی بات نہ ہو، بلکہ خریداری میں بھی سوچ سمجھ کر اپنی حیثیت اور وقت کے مطابق جو آپ خرید سکیں، جس سے دوسروں کا بھلا ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہاں سے ہی خرید کر آپ دیں۔ مثلا اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ کے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، یعنی یہاں سے بھی آپ کوئی اچھی کتابیں، اچھی کیسٹس، اچھی چیزیں لے کر آپ لوگوں کو، آنے والے مہمانوں کو دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح یہ ہے کہ جیسے خوشبو کا ہدیہ ہے تو وہ مہنگا ضرور ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے ہدیے کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے، اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ جتنے میں ایک جانماز آتی ہے اتنے میں خوشبو بھی آ سکتی ہے۔ جانماز کا اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے، خوشبو کا اٹھانا آسان ہے۔ تو اب ہوتا یہ کہ خوشبو عموماً چھوٹی سی چیز میں ہوتی ہے، جب دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کچھ ہی نہیں دے رہے، تو لوگ عموماً بلک کو بڑا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ہر لحاظ سے مصیبت ہوتا ہے بلک، دنیا کے بوجھ اٹھانا۔ تو اس میں آپ کو اگر محسوس ہو کہ ہاں جی بہت چھوٹی چیز آپ کو دینے میں وہ آ رہا ہے، تو آپ یہاں سے کوئی ساتھ کتاب لے لیں، کوئی چیز لے لیں، اس کے ساتھ خوشبو رکھ کے آپ دے دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے لیے تو مطلب یہ کہ پیسے کا صحیح استعمال اور درست جگہ پر، تاکہ وہ محض لوگوں کے سٹور ہی بھرنے یا لوگوں کی چیزوں میں اضافے کا سبب نہ بنے۔ اور پھر اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے انہی کو ہم دوبارہ تحفے بھی دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان رشتہ داروں کو ہم یاد نہیں رکھتے، انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں کون سا سوٹ دیا تھا حج پہ، تو ہم ان کو کیوں واپس کریں۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری ساری عبادتیں اور سارے سفر جو ہے وہ محض لین دین کا ایک حصہ بن کے رہ گئے۔ تو اس میں دے کر احسان نہ جتائیں، اور دے کر لینے کی توقع نہ رکھیں، اور کسی کے تحفے کا انتظار نہ کریں۔ کیوںکہ یہ جو اشراف نفس ہوتا ہے، اشراف نفس یہ کہ توقع رکھنا فلاں رشتہ دار حج سے آئے گا تو دیکھیں کیا لاتا ہے، یا یہ کہ وہ لایا ہے تو کیا لایا، کھول کے دیکھنا، منہ بنانا اور ناپسند کرنا، یہ ساری چیزیں گھٹیا حرکات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کو دعاؤں سے رخصت کریں، خوش دلی سے استقبال کریں، وہ کچھ لائیں آپ کے لیے یا نہ لائیں اس کا انتظار نہ کریں، کسی کو دے کر واپس لینے کا انتظار نہ کریں۔ یہ سب کام اگر فی سبیل اللہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح کو اتنی سچی خوشی نصیب ہوگی جو اس مادی چیزوں کی تبدیلی میں اور لین دین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے حج یا عمرے کو حفاظت کرنا بھی سیکھیں، یعنی حج اور عمرے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جو بخشش کے سامان وہاں سے ملے، جو تہجد کی مثلا عادت پڑی ہے، قرآن کی تلاوت کی، یا ذکر اذکار کی، یا اچھی روٹین کی، یا اچھی صاف ستھری غذا کھانے کی، یعنی ایک غذائی عادات کو درست کرنے کی، تو ان چیزوں کو واپس آ کر بھی اپنی روٹین میں لائیں۔ اور جس چیز سے پرہیز کرنا ہے وہ نیکیوں کا چرچا کرنے سے، کیونکہ نیکیوں کا چرچا کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنے طواف کی، کئی لوگ گن کے طواف بتاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ سارا وقت ڈائری میں یہ لکھتے رہتے ہوں گے کہ آج اتنے کیے اور آج اتنے، اور پھر ٹوٹل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس کا ذکر نہ کریں، کوئی پوچھے بھی کہ بس جو اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ جو نصیب میں ہوا کر لیا، یعنی ایسے سوالوں کو بھی ٹالیں کہ جس سے آپ کی نیکیوں کے بہت سے راز کھلیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر جو تکلیفیں پیش آئیں، چاہے امیگریشن سے، چاہے وہاں کی حرم کی انتظامیہ سے، یا کسی، ان کا بہت زیادہ تبصرہ اور تذکرہ اور چرچا نہ کریں، یہ مشکل ہوئی، یہ تکلیف ہوئی، بس الحمدللہ اللہ قبول کرے، جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کہیں ضرورت ہو تو کسی کو سیکھنے کے لیے، تجربے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لیکن بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم حج بھی کراتے ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سنتیں بھول جاتے ہیں، مخصوص دعائیں بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات غیر مسنون چیزیں پڑھ پڑھا کر وہی درود تاج وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے جس میں شرکی الفاظ ہیں، اور ساتھ نیکی کریں گے، ساتھ اس کو ضائع کریں گے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، حج کا سفر شوق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، عبادت کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، جنون کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے۔ یہ سفر دوسرے سفروں سے بہت مختلف ہے، اس لیے اسے عام سفر نہ سمجھیں، اس کی ابتدا سے انتہا تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں۔ یہ ایک دو سوال ہیں۔ سوال ہے، نقاب اگر سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں تو کیا اسکارف جو سلا ہوا نہ ہو بلکہ چکور کپڑے کو ڈبل کر کے بنایا ہو اور پن سے ٹائی کیا اور منہ پر بھی پن سے لگا لیں تو ٹھیک ہوگا؟ لگا سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات اسکارف بہت زیادہ ٹائی آپ اوپر نیچے کرنے سے وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ سینہ کھل جاتا ہے۔ تو اسکارف اگر آپ پہنے تو پلیز اپنا سینہ ضرور ڈھکے، کیونکہ قرآن میں خاص طور پر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کا حکم ہے کہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں۔ تو بعض خواتین چلی جا رہی ہوتی ہیں ہاتھ چھڑکاتے اور سینہ سارا کھلا، اور عام طور پر بھی یہ چیز ٹھیک نہیں، لیکن حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں ये चीजें जो हैं वो अजर व सवाब को ज़ाया करने का बायस बनती हैं। सवाल है, अगर आपके घर में जवान बेटी है तो पहले आप उसकी शादी करें, वो फ़र्ज़ है, और हज बाद में अगर ऐसा पहले करें तो क्या आपका हज हो जाएगा, यानी शादी पहले ना की तो? उसमें आप देखें कि एक तो शादियों के अखराजात हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, इसलिए हमें एक बच्चे के बाद एक के करने की वजह से हज का मौका नहीं मिलता। शादी को सिंपल करने की कोशिश करें, और अगर बेटी बाद में कोई देखने वाला है या कहीं छोड़ सकते हैं तो हज करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है कि कोई ऐसे शहर में या ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ आपके बच्चों की लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं, तो उस सूरत में फिर आप पहले बच्चों की हिफाजत का कोई इंतज़ाम करें और फिर हज करें। एक और मशवरा किसी ने दिया है कि अगर साथ एक छोटी सी टॉर्च भी रखी हो, क्योंकि कमरा जब बहुत से लोग शेयर कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात लाइट ऑन ऑफ करके वॉशरूम जाने के लिए बाहर अंदर निकलते हैं तो दूसरों की नींद ख़राब करते हैं, या पढ़ना होता है आपको, आपको नींद नहीं आ रही, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त आप तन्हाई में अकेले में अपनी रोशनी से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हों। इसी तरह यह है कि कांच की चूड़ियाँ पहनकर जाने से परहेज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात धक्कम पेल में चूड़ियाँ टूटती हैं, ज़मीन पर गिरती हैं, अपना खून भी निकलता है, दूसरों को भी अजियत हो सकती है। बाज़ लोग हज करके आते हैं तो अपने नाम के साथ हाजी या हजियानी लगाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है किसी को बताएं कि हमने हज किया हो या नहीं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको एक से ज़ायद हज करने की तौफीक दी हो तो उसको याद न रखा करें कितने किए। अगर मुझसे कोई भी पूछे आपने कितने हज किए, तो मैं अमूमन टाल देती हूँ। क्यों? इसलिए कि ये किसी को बताने की चीज़ तो नहीं है, ये तो आपका और आपके रब का मामला है, इबादत है। आपने कहा कि औरत खुशबू नहीं लगा सकती एहराम में, हालांकि औरत का एहराम नहीं होता। नहीं, औरत का एहराम उसकी नियत होती है, औरत का एहराम उसका इरादा और वो ये मखसूस हालत है। एहराम का लफ्जी माना होता है हराम करना, यानी एहराम कपड़े का नाम नहीं है, एहराम नियत और चंद पाबंदियों को कबूल करने का नाम है, उस हालत का नाम है। तो औरत और मर्द सब के लिए होता है, मर्दों का मखसूस लिबास होता है जबकि औरत का मखसूस लिबास नहीं होता। अब यह है कि घर में जैसे आप नहाए हैं और खुशबू वाले साबुन से नहा लिए या शैम्पू में खुशबू थी तो कोई हर्ज नहीं, कि उसके बाद आपने रास्ते में जब एहराम की नियत की तो पिछली खुशबू अगर साथ लगी हुई है तो हर्ज नहीं, एहराम की हालत में आकर फिर खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकते। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। एक और मशवरा है कि जो लोग आपके साथ हज या उमरे पर जाते हैं, वापस आकर उनकी गीबत ना करें, क्योंकि थोड़ी बहुत कोई तंगी तकलीफ हो जाती है फिर हम आके किससे कहानियाँ सुनाते हैं, वो फ़लाँ मेरे साथ था, उसने तो हद ही कर दी, फ़लाँ मौके पर ऐसा कर दिया, फ़लाँ मौके पर ऐसा, इससे भी आपका अजर जो है वो ज़ाया हो जाता है। जमजम पीते वक्त कोई मसनून दुआ बता दे। मुझे इस वक्त मसनून दुआ तो याद नहीं, लेकिन जो दुआ मैं मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन, ये दुआ। अच्छा, एक बात याद रखिए कि एहराम की पाबंदियाँ उमरा ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी, बाकी दिन जो आप मक्का मदीना में रहेंगे उसमें ये सारी पाबंदियाँ नहीं होंगी। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद सारा ही हज का सीज़न जो है वो खुशबू वाला शैम्पू या लोशन या कोई चीज़ नहीं लगा सकते। नहीं, ये सिर्फ एहराम की नियत करने से लेकर बाल काटने तक। क्या तवाफ़ इफाज़ा और रमी मखसूस अवकात में करना वाजिब है? क्या इन दोनों मनासिक के अवकात फ़िक्स हैं? नहीं, इनके अवकात फ़िक्स नहीं। रमी का वक्त तो है कि ज़वाल आफ्ताब के बाद होती है और पहले दिन सूरज निकलने के बाद, लेकिन बाकी वो नहीं है। अगर तवाफ़ इफाज़ा के वक्त किसी को पीरियड्स हों और हज के बाद ज़्यादा न रुक सके क्योंकि फ़्लाइट्स उसमें जा रही हो, तो फिर क्या करें? इसमें बिन बाज़ का फतवा आप पढ़ लें, वो कहते हैं कि फिर उस हाल में भी तवाफ़ लाजिम है। ये जदीद सूरत हाल को सामने रखे उनका इज्तिहाद है, मेरा नहीं। या यहाँ से निकल के कहें वो उन्होंने कहा है पीरियड्स में तवाफ़ किया करें, ये मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन इनकी किताब जो है ना, बिन बाज़ सऊदी स्कॉलर है वहाँ के, क्योंकि अगर हर औरत हर फ्लाइट में, एक दो औरतें तो ऐसी हो सकती हैं कि जिनके पीरियड्स हों, अगर वो सब छोड़ती जाएँ फ्लाइट छोड़ती जाएँ छोड़ती, तो आप देखें कि बनेगा क्या, और फिर साथ ही राइट अवे फ्लाइट शुरू हो जाती हैं, तो इसमें वाकई मुश्किल होती है। तो इस पर उन्होंने इज्तिहाद किया है कि औरत अपने आप को अच्छी तरह समेट ले और सिर्फ चक्कर लगा कर आ जाए, नमाज तो नहीं पढ़ सकेगी लेकिन खाना काबा के गिर्द तवाफ करके आ सकती है। बहरहाल आप देख लीजिए कि आप किसी और स्कॉलर से भी पूछ लीजिए कि क्या करना चाहिए। क्या हज या उम्रा कर्ज के पैसों से कर सकते हैं? आपको तो जाने से पहले बाकी कर्जे भी उतारने हैं, कहाँ ये कि आप कर्ज लेकर जा रहे हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.